दिन भर तारीख 14 जुलाई दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहन लाल शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए शीला दीक्षित बनी कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा।
वो पहली बार आपका अंदाजा सही निकला है, आप सीएम कैंडिडेट कहिए या पार्टी का चेहरा कहिए, किसी भाषा में श्रीमती शीला दीक्षित।
दादरी मामले में स्थानीय अदालत ने कहा अखलाक के परिवार पर चलेगा गो हत्या का मामला। दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जनरल वीके सिंह पहुंचे राजधानी जुबा, पर आसपास फंसे लोग जहाज तक पहुंचे कैसे?
दो प्लेन इधर आए, मैं जुबा से 170 किलोमीटर दूर हूँ, सब रास्ते एकदम बंद है, किधर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई आदमी बाहर नहीं निकल रहा, तो मैं जुबा कैसे पहुंच सकता हूँ? नहीं पहुंच सकता जुबा।
कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमरीश द्विवेदी से। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शीला दीक्षित को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी 78 वर्षीय शीला दीक्षित अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का मुख्य चेहरा होंगी। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने अपने मंत्रिमंडल में कई बड़े बदलाव किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों को हटा दिया गया है और कई को नए विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के अभियान का समर्थन कर रहे विधि मंत्री माइकल गव, शिक्षा मंत्री निकी मॉर्गन और उत्तरी आयरलैंड मंत्री टेरिजा विलियर्स ने मंत्री पद छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने बुधवार को ही शीर्ष मंत्रियों के नाम की घोषणा कर दी थी। लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन नए विदेश मंत्री बनाए गए हैं और विदेश मंत्री फिलिप हैमंड को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोरिस जॉनसन को विदेश मंत्री बनाने के प्रधानमंत्री के फैसले पर दुनिया भर से मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और लातविया के विदेश मंत्रियों ने कहा है कि वो बोरिस के साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां मार्क एरो ने कहा है कि बोरिस जॉनसन ने जनमत संग्रह अभियान के दौरान झूठ बोला था। वो ब्रिटेन के ईयू से अलग होने का समर्थन कर रहे थे और अब उनके लिए मुश्किल हो गई है। फ्रेंच विदेश मंत्री ने कहा, मैं बोरिस जॉनसन को लेकर कतई चिंतित नहीं हूँ, लेकिन आप उनके काम करने का अंदाज जानते हैं। कैंपेन के दौरान उन्होंने ब्रितानी जनता से झूठ, खूब झूठ बोला था और अब उन्हीं पर देश के हितों की रक्षा और यूरोप के साथ संबंधों को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है। ये थे फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां मार्क एरो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के दादरी में लगभग 1 साल पहले गोमांस रखने के संदेह में घर से निकालकर मार दिए गए मोहम्मद अखलाक के परिवार पर अब गो हत्या का मामला चलेगा। उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश अखलाक के बिसाड़ा गांव के एक बुजुर्ग ग्रामीण की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। हालांकि अखलाक के परिवार के वकील मोहम्मद यूसुफ सैफी ने कहा है कि यह मामला झूठे तथ्यों के आधार पर बनाया गया है। भारत प्रशासित कश्मीर में हिंसा के शिकार हुए लोगों के इलाज के लिए भारत सरकार ने नेत्र विशेषज्ञों की टीम भेजी है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हुए अलगाववादी प्रदर्शनों में अब तक 36 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर प्रदर्शनकारी थे जिन्हें पुलिस के साथ हिंसा के दौरान गोली लगी थी। घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर को सुरक्षा बलों द्वारा फायर किए गए रबर और स्टील के छर्रों से आंख में चोट लगी है। डॉक्टरों के मुताबिक 100 के करीब घायलों की आंखों की रोशनी जा सकती है। दक्षिण इटली के एक स्टेशन मास्टर ने स्वीकार किया है कि उन्होंने एक ट्रेन को सिंगल लाइन वाली पटरी पर हादसे से कुछ मिनट पहले ही हरी झंडी दी थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। यूं तो पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की रणनीति की चर्चा हो रही थी, लेकिन जिस दिन कांग्रेस ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान राज बब्बर के हाथ में होगी, उस दिन मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस का चेहरा कौन सा होगा, उसकी चर्चा शुरू हो गई। कयास थे कि कांग्रेस शीला दीक्षित को सामने ला सकती है और ये कयास आज सही साबित हुए। संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया और कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने मुस्कुराते हुए कहा,
वो पहली बार आपका अंदाजा सही निकला है, आप सीएम कैंडिडेट कहिए या पार्टी का चेहरा कहिए, किसी भाषा में श्रीमती शीला दीक्षित।
तो अब यह साफ है कि उत्तर प्रदेश चुनावों में कांग्रेस की ओर से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शीला दीक्षित बतौर मुख्यमंत्री उतर गई हैं। हालांकि शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, लेकिन पार्टी ने फिर भी उनके नाम का चयन किया और बचाव भी किया है। लखनऊ से समीर आत्मन मिश्र की रिपोर्ट।
लंबी रणनीतिक जद्दोजहद और विचार विमर्श के बाद कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ उतरने का फैसला कर लिया। यही नहीं, पार्टी ने इस चेहरे के लिए शीला दीक्षित का नाम भी घोषित कर दिया। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने नई दिल्ली में ये घोषणा की। 78 वर्षीय शीला दीक्षित ने पार्टी की ओर से दी गई इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा
कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और ये जिम्मेदारी दी, मैं इस जिम्मेदारी के लायक बनूं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहतर अपना रिजल्ट है वो होगा, इस पे मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा रिजल्ट आएगा।
दो दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राज बब्बर के नाम की घोषणा की थी और तभी ये कयास भी लग रहे थे कि शीला दीक्षित का नाम भी घोषित हो सकता है, लेकिन उसके लिए पार्टी ने दो दिन का और इंतजार किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित की भूमिका को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार कयास लग रहे थे। बताया ये भी जा रहा था कि पार्टी के रणनीतिकार आलाकमान पर उनके नाम को आगे करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते शीला दीक्षित के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों के चलते शायद पार्टी हिचक रही थी। लेकिन अब जबकि पार्टी ने उनका नाम घोषित कर दिया है तो इन आरोपों का जवाब भी पार्टी तैयार करके लाई है। गुलाम नबी आजाद कहते हैं,
हजारों करोड़ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर भी है और राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी है और कई आरोप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी है, कई आरोप कई मंत्रियों पर बीजेपी के महाराष्ट्र में भी है। हाँ, अगर वो तीन मुख्यमंत्री इन आरोपों के आधार पर इस्तीफा देते हैं तो हम भी अपना चेहरा वापस लेने के लिए तैयार हैं।
माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 11% ब्राह्मणों को लुभाने के लिए शीला दीक्षित के नाम को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने का फैसला किया है। शीला दीक्षित यूं तो पंजाब से आती हैं और उन्होंने पढ़ाई लिखाई दिल्ली से की है, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश से ही की है। 1984 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव जीता और बाद में राजीव गांधी मंत्रिपरिषद में मंत्री भी बनी। शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश से अपने जुड़ाव के बारे में कहती हैं।
मैं उत्तर प्रदेश की बहू हूँ, मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई है, मेरी पैदाइश पंजाब में हुई, मेरा काफी जीवन दिल्ली में गया, लेकिन बहू मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, बहू होना ही काफी पर्याप्त होना चाहिए।
1998 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा किया और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की बागडोर उन्हें सौंपी। 1998 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में जीत हासिल की और शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो लगातार 3 कार्यकाल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। उत्तर प्रदेश में शीला दीक्षित को ये जिम्मेदारी उस वक्त दी जा रही है जब राज्य में कांग्रेस पार्टी पिछले करीब 3 दशक से सत्ता में आने की राह देख रही है। जानकारों का कहना है कि पार्टी ने तो शीला दीक्षित में भरोसा जता दिया है, लेकिन कांग्रेस का पुराना मतदाता कांग्रेस और शीला दीक्षित पर कितना भरोसा कर पाता है ये देखने वाली बात होगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
अब से कुछ देर पहले मैंने बात की कांग्रेस पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई से और पूछा कि कांग्रेस को इस नतीजे पर पहुंचने के लिए किन किन पेचीदगियों से गुजरना पड़ा।
कांग्रेस की कुछ मजबूरियां हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव एक उन्हें आगे बढ़ के लड़ना है, क्योंकि उनकी जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है, जो गैर भाजपा दल है, उनके साथ कोई बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति में नहीं है कि कुछ नीतीश कुमार की तरह बिहार के मॉडल पे गठबंधन कर सके। तो इन हालात में उन्हें अपना चेहरा उतारना था और वहाँ कांग्रेस जन ये चाह रहे थे कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी वहाँ चेहरा बने, लेकिन कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है और भी कांग्रेस को बहुत सारी दुश्वारियां हैं। उनके 89 से लेके अभी तक उनकी कभी राज्य में सरकार नहीं रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत कम है, इसलिए कांग्रेस ने एक शीला दीक्षित का कि एक नामी ग्रामी नाम का सहारा लिया है और प्रदेश अध्यक्ष भी राज बब्बर को बनाया है। वो एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाहते हैं जहां संगठन की कमी की भरपाई हो सके।
लेकिन क्या इस चेहरे से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या के वर्चस्व को, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में वर्चस्व को या मायावती के वर्चस्व को तोड़ा जा सकता है?
देखिए, कांग्रेस ने जो समय चुना है ये समय वर्कर्स को अपनी तरफ तोड़ने और उनको साधने का नहीं है। अब तो सिर्फ कांग्रेस जो है वो जनता से संवाद स्थापित करना चाह रही है उत्तर प्रदेश के वोटर्स के साथ कि देखिए हमारा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, 3 बार मुख्यमंत्री रही है, एक शालीन एक सभ्य महिला है और उन्होंने एक अचीवर रही है, एक कास्ट के हिसाब से ब्राह्मण फैमिलीज को बिलोंग करती हैं, तो उनको वोट दिया जाए। तो कांग्रेस को खुद बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा दिखाना चाहती है कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दूसरी तरफ मायावती, तीसरी तरफ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तो कांग्रेस भी ऐसा लगे कि कांग्रेस मैदान में नहीं।
कांग्रेस मैदान में नहीं है। शीला दीक्षित के चयन का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। उत्तर प्रदेश के दादरी में लगभग एक साल पहले गौमांस रखने के आरोप में घर से निकालकर मार दिए गए मोहम्मद अखलाक के परिवार पर अब गोहत्या का मामला चलेगा। बहुचर्चित दादरी मामले में मोहम्मद अखलाक के परिवार के बारे में स्थानीय अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने पुलिस से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश अखलाक के गांव बिसाड़ा के एक बुजुर्ग ग्रामीण की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 50 साल के मोहम्मद अखलाक को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कथित रूप से गौमांस रखने की अफवाह उड़ने के बाद मार दिया था। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने बात की अखलाक के वकील मोहम्मद यूसुफ सैफी से।
अभी लोअर कोर्ट से 156(3) का जो प्रार्थना पत्र बिसाड़ा वालों ने दिया था उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश थाना जारचा को दिए हैं, लेकिन 156(3) में जो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था उस प्रार्थना पत्र में कुछ चीजें नई उभर कर आई हैं। जिस तरीके से ओमपाल सनोव बलजीत, कंची सनोव रामजीलाल और संजय राणा, इन तीनों लोगों ने ये बताया कि हमने अखलाक को पकड़ा था और वहाँ जो है भीड़ ने अखलाक को मौत के घाट उतारा, ये नाम FIR में नहीं थे। और इस 156(3) में जिसमें कोर्ट ने आज आदेश किए हैं, इन लोगों ने खुद प्रार्थना पत्र में अपने जुर्म का इकबाल किया है, इनके खिलाफ हम पुलिस की कार्रवाई करेंगे।
ये बताएं सैफी साहब, लेकिन ये एक निचली अदालत ही सही, लेकिन अदालत ने अगर इस तरह की बात कही है तो क्या एक तरह से केस कमजोर होता देख रहे हैं क्या अपना?
नहीं, केस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि केस को मजबूती मिलती है। मजबूती ये मिलती है कि ये मुलजिमान जो मर्डर के मामले में FIR दर्ज है, जो जेल में है, उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है। वो कह रहे हैं कि हाँ हमने मर्डर किया है, इससे बहुत बड़ी चीज, ये बिल्कुल झूठी घटना है।
लेकिन ये जो आदेश आया ये तो गोकशी के मामले पे?
जी, ये गौकसी में ही आदेश है और इसमें इन्वेस्टिगेशन के पुलिस को आदेश दिए गए हैं। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, हम पुलिस को कोऑपरेट करेंगे।
मोहम्मद अखलाक के परिवार का क्या रिएक्शन है अब जो ताजा डेवलपमेंट हुआ है?
ना तो उन्होंने इस तरीके की कोई घटना की थी, क्योंकि एक मुस्लिम जो इन्होंने FIR का जो 156(3) का प्रार्थना पत्र दिया है उसमें कहा है कि एक बछड़ा जो गांव में आवारा घूमता था उसको पकड़कर कुर्बानी की है। कोई भी मुसलमान अगर कुर्बानी करता है तो अपनी कमाई हुई पैसे कुर्बानी देता है, ना कि चुराकर।
अखलाक के परिवार के वकील यूसुफ सैफी से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। अफ्रीका के दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने एक बार फिर से जनरल वीके सिंह को वहां भेजा है और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह वायुसेना के विशेष विमान से राजधानी जुबा में पहुंच चुके हैं। सूडान में सैकड़ों भारतीय फंसे हैं और पिछले कुछ दिनों से वहां पर गृह युद्ध की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण है कि पिछले साल भी जनरल वीके सिंह को भारत सरकार ने यमन भेजा था और यमन में गृह युद्ध जारी था, तब उन्होंने वहां से करीब सैकड़ों लोगों को सुरक्षित रिहा कराया था। विनीत खरे ने बात की दक्षिण सूडान में फंसे मौजूद भारतीय जोगिंदर पाल सिंह से और पूछा कहाँ हैं आप और क्या आप वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं?
मैं सर जुबा में होता था, मैं आज रस्ते इंडिया वाले रस्ते में होता, ऑन वे में होता, अभी मैं टोरिट में हूँ, जुबा से 170 किलोमीटर दूर। अभी वापस लौटने वो सब कुछ पहले से प्रोसेस चल रहा था, मैंने भी अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया, मेरे साथ दो इंडियन आदमी और भी, उनका भी करवाया, सब कुछ प्रोसेस हुआ, एकदम से क्लीन चल रहा था। दो प्लेन इधर आए, जुबा में आए, जो साउथ सूडान की कैपिटल जुबा, उधर आए। मैं जुबा से 170 किलोमीटर दूर हूँ, ऑल रास्ता सब रास्ते एकदम बंद है, किधर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई आदमी बाहर नहीं निकल रहा, तो मैं जुबा कैसे पहुंच सकता हूँ? नहीं पहुंच सकता जुबा, इसलिए मैं इधर टॉयलेट में ही फंसा हुआ हूँ। इधर ही
टॉयलेट में क्या किसी होटल में है, घर पे है और आसपास आपके अगल बगल क्या दिख रहा है आपको?
मैं रेंट पे रह रहा हूँ, इधर किराए पे मकान लेके रहता हूँ और मेरे साथ दो इंडियन और भी हम साथ में काम कर रहे हैं, कंपनी है, उस कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी ने हमारे को इधर भेजा, कोई प्रोजेक्ट मिला था उसके लिए काम करने के लिए इधर रेंटिंग पे रह रहे हैं, पूरा सामान पड़ा हुआ हमारा, अभी बाहर फाइटिंग चल रहा है, कल शाम को भी फायरिंग हुआ था, अब मेरा एकदम आउट में है, मतलब सिटी में एंट्री करता हूँ उससे पहला मेरा ही आता है स्टार्टिंग में घर, तो जो भी स्टार्टिंग होता है वो मतलब आउटसाइड में ही, आउटसाइड से स्टार्ट होकर सिटी के अंदर जाता है, तो जो भी हो रहा है वो सब मतलब कल शाम को भी फायरिंग हुआ, आज सुबह सुबह भी एक बार 15-20 मिनट के लिए हुआ, अभी कहीं भी बाहर नहीं निकले, कोई मूवमेंट नहीं है, आउटसाइड कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है, कोई भी नहीं निकल सकता।
आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके साथ वहाँ पर कितने भारतीय हैं टोटल?
मेरे साथ अभी इधर से इधर 13 आदमी है इंडियन, जिनमें कुछ गुजराती हैं, कुछ आंध्रा के हैं और मैं राजस्थान का झुंझुनू का हूँ।
बाहर गोलियां भी चल रही हैं, तो कितनी मतलब खाने पीने की क्या व्यवस्था है वहाँ पर?
खाने पीने की कुछ भी नहीं है, पिछले 5 दिन से बाहर नहीं निकले, मार्केट सब बंद है, राशन कुछ मिल नहीं रहा, बस एकदम छुपे बैठे हैं घर के अंदर।
और लाइट है, बिजली है, खाने पर खा क्या रहे हैं फिर? पानी पीने
की लाइट, पानी के लिए जो ये 2-3 दिन का तो स्टॉक था पानी का, अभी बरसात हुआ 2-3 दिन रेन सीजन चल रहा है, पानी का कुछ नहीं है इधर, लोग लोकल आदमी नदी का पानी पीते हैं, हम मार्केट खुलता है तो मार्केट से जरीकल लेके आते हैं।
आपके पास पानी
दिन नहीं खुला हुआ, फ्राइडे से मार्केट नहीं खुला,
तो आपके पास पानी पीने के लिए नहीं है, तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है फिर?
क्या कर रहे थे सर, अभी कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ थोड़ा मोटा पैसा था वो भी खत्म हो गया, कि हफ्ते बैंक हमेशा जेब में नहीं रख सकते पैसा, जिसे बैंक में रखते हैं बैंक बंद है,
परिवार वालों से
चलवा सकते हैं मार्केट में हर।
जी जी जी, आपकी परिवार वालों से क्या बात हो पाई है?
नहीं बात हुआ है, खाली मेरी वाइफ से बात करता हूँ मैं, दूसरे से किसी को टेंशन नहीं लेना चाहता, उनको टेंशन लेने से फादर है मदर, उनको टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं कर सकते, खाली मेरी वाइफ को मालूम है।
आखिरी सवाल आपसे जोगिंदर पाल सिंह जी, अगर भारत सरकार से आप क्या कहेंगे, अगर सुषमा जी आपकी बात सुन रही है, कोई सरकार में आपकी बात सुन रहा है, आप उनसे क्या कहेंगे?
ऐसी अगर गवर्नमेंट को व्यवस्था करती है, कोई छोटा चार्टर्ड प्लेन भेजती है तो 10-12 आदमी उनको चार्टर्ड प्लेन चयनित करे, जुबा से आके बाद में कहीं भी भेजती है, गवर्नमेंट इंडिया लेके जाती है, कहीं भी व्यवस्था होती है तो अच्छा है, अगर वो नहीं होता तो कोई युगांडा से, अगर इंडियन एम्बेसी युगांडा से कुछ हेल्प कर सकती है तो उधर से चार्टर्ड प्लेन आ रहे हैं, लोग किराए पे कर रहे हैं, ताकि एनजीओ है कुछ यूनिमिक एजेंसी है वो अपना चार्टर्ड प्लेन किराए पे करके आदमी को एयरलिफ्ट करके वो युगांडा लेके जा रही है। मेरे से युगांडा बॉर्डर पड़ता है 145, सभी आदमी पैसा कमाने के लिए इधर आए थे, अभी ये चल रहा है कि चलो जिंदा रहेंगे मालूम नहीं मरेंगे।
टोरेंट में फंसे भारतीय जोगिंदर पाल सिंह की दास्तां आप सुन रहे थे। और अब विशेष रिपोर्ट। भगवान बचाए अस्पतालों और वकीलों से आपने लोगों को ये कहते अक्सर सुना होगा, कहा जाता है कि एक बार कोई इनके चक्र में फंस गया तो वो चक्कर दर चक्कर घूमता ही रहेगा। लेकिन ये भी सच है कि बीमारी में आपको अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर लगाने ही पड़ते हैं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप जिस अस्पताल में जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, फीस कितनी है, सुविधाएँ कैसी हैं। अस्पतालों और डॉक्टरी पेशे की पड़ताल करती हमारी विशेष श्रृंखला की चौथी कड़ी में सुनिए विनीत खरे की विशेष रिपोर्ट।
सरकार ने वर्ष 2010 में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट कानून पारित किया था। मकसद था निजी अस्पतालों, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटरों की जवाबदेही निर्धारित करना, ये सुनिश्चित करना कि वो खुद को रजिस्टर करवाएं, वे न्यूनतम मापदंडों का पालन करें और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाए। इस कानून की मदद से अस्पतालों, वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाना आसान हो जाता। इससे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर योजनाएं बनाने में मदद मिलती। स्वास्थ्य मामलों में सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन से जुड़े रहे सुनील नंदराज बताते हैं।
Studies had shown that 70-80% of the care, especially OPD care.
सुनील का कहना था कि शोध से पता चला है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निजी अस्पतालों का दबदबा है, इससे इलाज का खर्च बढ़ रहा था, साथ ही सरकारी अस्पतालों में जवाबदेही लाने की भी जरूरत थी। सुनील नंदराज बताते हैं कि 5 राज्यों राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम और उत्तराखंड ने इस कानून को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर कई चुनौतियां हैं। आइए जानते हैं इस कानून की मुख्य बातें।
कानून का मकसद था अस्पताल, क्लिनिक खुद को रजिस्टर करवाएं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो लोगों को न्यूनतम सुविधाएं और सेवाएं दें।
ये कानून अस्पताल, मैटरनिटी होम्स, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरी क्लिनिक और आरोग्य निवास के अलावा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी दवाओं से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी लागू है।
स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले सभी संस्थानों के लिए जरूरी है कि मरीजों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ और मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें।
इन संस्थानों का दायित्व है कि अगर कोई रोगी आपातकाल स्थिति में अस्पताल पहुंचता है तो उसे वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जिससे रोगी को स्थिर किया जा सके।
स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले सभी संस्थान अपनी सेवाओं के मूल्यों को राज्य सरकारों से बातचीत करके और केंद्र सरकार की सूची में निर्धारित सीमाओं के भीतर तय करेंगे और इन मूल्यों को स्थानीय और अंग्रेजी भाषाओं में अस्पताल में प्रदर्शित किया जाएगा।
कानून के मुताबिक अगर किसी भी निर्धारित प्रावधान का उल्लंघन होता है तो अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। रजिस्टर करने वाले अधिकारियों के पास जांच और तहकीकात के अधिकार होंगे। कानून में उल्लंघन पर जुर्माने की भी बात कही गई है।
इस कानून की कई बातों पर डॉक्टरों की नाराजगी है। डॉक्टरों की सबसे ज्यादा नाराजगी सेक्शन 12(2) से है। इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई रोगी आपातकाल स्थिति में अस्पताल पहुंचता है तो उसे वो सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी जिससे रोगी को स्थिर किया जा सके। वकील और डॉक्टर एमसी गुप्ता कहते हैं,
आज की तारीख में अगर एक आदमी औरत जल जाता है, घर में आग लग गई या खुद जल गए, आपको अंदाज होगा कितना कॉस्टली ट्रीटमेंट है बर्न्स का, एक्सट्रीमली कॉस्टली। एक मरीज है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है सड़क के ऊपर, छह हड्डी टूट जाती हैं उसकी, उसको लेकर आएंगे मरीज में, छह हड्डी टूटी है, कितना कितना एक पहले दिन में खर्चे हजारों के हो जाते हैं, सर्जरी करनी पड़ती है, Who will pay for all that? कौन खर्चा देगा उसका?
अगस्त 2006 में जस्टिस जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में डॉक्टरों के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि वो किसी भी अवस्था में इमरजेंसी स्थिति में आए किसी भी रोगी को बिना इलाज के वापस नहीं लौटाएंगे। खर्च की समस्या से निपटने के लिए इस रिपोर्ट में दुर्घटना के शिकार लोगों, प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिलाओं के साथ साथ उन लोगों को जिन्हें आपातकाल मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है, मेडिकल सर्विसेज फंड बनाने का सुझाव दिया गया था। बीबीसी से बातचीत में जस्टिस राव ने बताया कि इस फंड की स्थापना राज्यों को करनी थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट पर सरकारों ने क्या कार्रवाई की ये उन्हें मालूम नहीं। डॉक्टरों पर आरोप है कि वो किसी भी तरह की जवाबदेही से बचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस कानून का विरोध किया। लेकिन डॉक्टरों का दावा है कि इस कानून में अधिकारियों को अनियंत्रित अधिकार दिए गए हैं और वो अपने अधिकारों का अस्पतालों के खिलाफ अकारण इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर एमसी गुप्ता,
इट गिव्स अनब्राइडल्ड अथॉरिटी टू दैट एजेंसी टू कैंसिल एनीबडीज लाइसेंस टू प्रैक्टिस।
डॉक्टर गुप्ता कह रहे थे कि इस कानून से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा और डॉक्टरों को परेशान किया जाएगा। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि विभिन्न सेवाओं के लिए उनकी फीस क्या होगी इसे सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती। डॉक्टरों को रोगियों की इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ और मेडिकल रिकॉर्ड रखने में भी आपत्ति है क्योंकि उनका कहना है कि इससे उनका खर्च बढ़ेगा। किसी अस्पताल मेडिकल क्लिनिक में घुसते वक्त ये विश्वास होना कि आप सही व्यक्ति के पास जा रहे हैं, आप ऐसे अस्पताल में जा रहे हैं जो रजिस्टर्ड है, जहां सुविधाएं एक बेहतर स्थिति में हैं, बेहद जरूरी है। सुनील नंदराज के अनुसार कानून के बेहतर क्रियान्वयन पर काम तो चल रहा है लेकिन इसकी गति बेहद धीमी है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
और अब कार्यक्रम में आपकी राय, आपकी चिट्ठियां,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का
और मेरा वंदना का भी।
वंदना के पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं। हफ्ते के दूसरे दिन यानी बृहस्पतिवार को हम कुछ चिट्ठियां, कुछ ईमेल्स लेके हाजिर हैं फिर एक बार आपके सामने।
जी राजेश जी, ये ईमेल आया है मौलानगर सीतामढ़ी बिहार से आसिफ करीम साहब का। लिखते हैं कि मैं तो सोचता था अब की इंडिया बोल का विषय चिलकॉट रिपोर्ट या मिनेसोटा शूटिंग पर होगा, मगर क्या करे, कुछ तो फर्क होना चाहिए हमारी और आपकी पसंद में। और यह पसंद तो उस वक्त और भी प्रबल हो जाती है जब अधिकार किसी एक के पास ही सुरक्षित हो।
ये कहना क्या चाह रहे हैं हमारे दोस्त कि अधिकार किसी एक के पास सुरक्षित हो, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि आप खुद ही तय कर लेते हैं और खुद ही कार्यक्रमों का विषय बताते हैं, हमको तो सुनना पड़ता है। लेकिन भाई दरअसल ऐसा है नहीं, ये जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ ऐसी बड़ी हो जाती है जिसके बारे में बहस ज़रूरी है तो उस हिसाब से हम विषय तय करते हैं। अब चिलकॉट की रिपोर्ट के बारे में बात हो ही गई थी इसलिए हमने उसको बहस तलब नहीं समझा, लेकिन आप अपने सुझाव दीजिए, अगर कोई विषय आपके जहन में आता है तो हम उस पर गौर करेंगे।
जी बिल्कुल। और कई सारी जो चिट्ठियाँ ईमेल आई हैं, जो विनीत खरे की एक श्रृंखला चली है मेडिकल नेग्लिजेंस जो जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो तमाम खामियां एक तरह
खामी
से
आती हैं और डॉक्टर परेशान करते हैं या डॉक्टरों की भी अपनी शिकायतें अपनी जगह, लेकिन हाँ उन पर ये सीरीज अभी चल रही है।
जी, सुरेंद्र नाथ सिंह नागांव असम से, इन्होंने लिखा है कि मेडिकल नेग्लिजेंस पर आधारित कड़ी में सबसे बेहतरीन और हम श्रोताओं के फायदे वाली कड़ी इन्हें लगी, जिसमें अधिकारों के बारे में विस्तृत तौर पर बताया गया। तो ये इसके लिए इन्होंने बीबीसी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। इसी तरह की और कई ऐसी चिट्ठियां हैं, जैसे नितेश पंत है कांकेर छत्तीसगढ़ से, उन्होंने भी इसी सीरीज का जिक्र किया है और कहते हैं कि आप लोग काफी सटीक प्रोग्राम समय समय पर देते रहते हैं।
लेकिन अब मैं आप लोगों की चिट्ठियां पढ़ के थोड़ा दिमाग में बात ये आ रही है कि हमारे कुछ श्रोता हैं वो लगातार हमें चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे श्रोता भी हैं जो बिल्कुल खामोश रहते हैं, किनारे बैठ के प्रोग्राम सुनते हैं, उसके बाद रेडियो ऑफ कर देते हैं। हमारी चाहे वो मन में आलोचना करते हों या प्रशंसा करते हों, हम तक तो नहीं पहुंचती।
और ये दशकों से सुन रहे हैं कार्यक्रम। और एक ईमेल है अवनीश कुमार सिंह, इन्होंने शिकायत की है कि आप जजमेंटल होते जा रहे हैं,
यानी आप फैसले सुनाने लगे हैं।
जी जी जी, ये कहते हैं कि बीबीसी के स्तंभकार अपने नजरिए को थोपते हैं और अगर आप खुद को तटस्थ मानते हैं तो कश्मीर के मसले में आप सिर्फ
इन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, हम उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अवनीश जी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सलाह देना चाहता हूँ कि जो आप लिखें उसमें शालीनता मर्यादा का ज़रूर ध्यान रखें। हम ऐसी किसी चीज़ को प्रसारित नहीं कर सकते जो किसी समुदाय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में अभद्र टिप्पणी हो, लेकिन आपकी शिकायत अगर ये है कि हम जजमेंटल हो रहे हैं तो आपको शायद आपने बहुत गौर से प्रोग्राम नहीं सुने हैं। कश्मीर के मामले में हमने राधा कुमार से बात की और जितनी तरह की आवाजें होती हैं हम कश्मीर के मामले में आपके सामने रखते हैं। अब आप जो सुनना चाहते हैं वही सुने, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप हमारे कार्यक्रम लगातार सुने, वेबसाइट गौर से पढ़ें और लगातार नजर रखें उस पर, तब आपको एक पूरी पिक्चर मिलेगी।
जी,
और आप कहां से लिख रहे हैं ये भी आपने नहीं लिखा, अगली बार से अपने गांव का नाम या शहर का नाम लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा।
जी बिल्कुल,
बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि कोई अब
आप
इशारा कर रही है,
एक पोस्ट कार्ड जरूर ले लीजिए। हमारे बहुत ही नियमित श्रोता है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, ग्राम
कैथनपुरवा,
पोस्ट सातनपुरवा, जिला अमेठी,
उत्तर प्रदेश
से हैं। और ये कहते हैं कि कैलाश खेर से बातचीत काफ़ी पसंद आई, थोड़ी सी शिकायत है कि संजय मिश्रा जिन्होंने इंटरव्यू किया उनकी आवाज़ थोड़ी इन्हें आकर्षण में।
देखिए साहब, आवाज़ तो ठीक है, आवाज़ तो अपनी अपनी जगह है, उनके सवालों में कितनी गहराई थी, उन्होंने जो सवाल पूछे वो आपको कितने पसंद आए, और कैलाश खेर का पूरा इंटरव्यू आपको पसंद आए, ये बड़ी बात है। किसी की आवाज़ थोड़ा दबी हुई होती है, किसी की ऊँची होती है, इस पर शायद कम ध्यान दिया जाना चाहिए, ध्यान इस बात पर दिया जाना चाहिए कि कैलाश खेर ने क्या कहा
जी, और हमारे नए साथी हैं और हाँ, समय
और
के
कितनी
साथ
गहराई से बात कहते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पास समय नहीं है वंदना जी, आपकी इजाजत हो तो मैं श्रोताओं को पता बता दूं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब कार्यक्रम में खेल समाचारों के साथ रजत चांदना मौजूद है। रजत, क्या चल रहा है खेल की दुनिया में?
जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जारी पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट खोए 116 रन बना लिए हैं और इंग्लैंड में लॉर्ड्स मैदान पर जारी इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए और फिर वॉक्स ने उनका विकेट ले लिया। उसके बाद शाहान मसूद और अजहर अली भी जल्दी आउट हो गए, उनका विकेट 7 रन पर ही आउट हो गया। फिलहाल यूनिस खान और मिसबा उलक पारी को संभाला हुआ है और पाकिस्तान ने, जैसे मैंने कहा, आपकी बिना 3 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए हैं। वहीं डेविस कप में कल से चंडीगढ़ में भारत का मुकाबला एशिया और ओशियानिया ग्रुप एक टाइम में कोरिया के खिलाफ शुरू होगा। टेनिस की चोट से उबर रहे भारत के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी यूकी भामरी भारत के लिए डेविस कप जीतना चाहते हैं और बीबीसी से खास बातचीत में बताया उन्होंने कल की मैच की रणनीति के बारे में।
हर टेनिस प्लेयर के लिए डेविस कप बहुत मायने रखता है क्योंकि वही एक मौका होता है जहाँ पे तुम अपने कंट्री के लिए खेल सकते हो, क्योंकि बाकी टाइम सारे टूर्नामेंट्स में अपने लिए खेलते हो, इंडिविजुअल स्पोर्ट है। तो मेरे लिए भी काफी मायने रखता है और कोशिश यही है कि मैं कोरिया के अगेंस्ट जीत दिलवाऊं।
उधर भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप के खिलाफ होने वाले WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट खिताबी मुकाबले के लिए उन पर कोई दबाव नहीं है और इस मैच के लिए वो अपना 100% देना चाहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया रजत चांदना। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शीला दीक्षित को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों को हटा दिया है और कई को नए विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के दादरी में लगभग एक साल पहले गोमांस रखने के संदेह में घर से निकालकर मार दिए गए मोहम्मद अखलाक के परिवार पर अब गोहत्या का मामला चलेगा। भारत प्रशासित कश्मीर में हिंसा के शिकार हुए लोगों के इलाज के लिए भारत सरकार ने नेत्र विशेषज्ञों की टीम भेजी है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।